आरवी शान के पीछे खड़ी थी। शान जहां जाता वो भी उसके पीछे पीछे चल देती, शान रुकता तो वो भी खड़ी हो जाती। करीब 10 मिनट तक शान ये सब देखता रहा और उसकी हरकतों से चिढ़ता भी रहा, पर आरवी नहीं रुकी। आखिर में शान गुस्से में पीछे पलटा और खींच कर बोला, क्या है, क्यों मेरे पीछे पीछे पूंछ बनी घूम रही हो? अगर कुछ कहना है तो कहो, ये नाटक क्या लगा रखा है? आरवी उसके अचानक पलटने और चिल्लाने से डरकर पीछे सरक गई और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी। शान के सवाल पर भी वो चुप सी खड़ी रही तो शान कुछ देर उसके कुछ कहने का इंतजार करता रहा। उसको देर हो रही थी और आरवी कुछ नहीं कह रही थी, जिस वजह से उसको गुस्सा आने लगा था। उसने कुछ देर इंतजार किया, पर जब आरवी ने तब भी कुछ नहीं कहा तो उसने फिर से गुस्से से कहा, अब बोलो कि भैया आंखें फाड़े मुझे देखती ही रहोगी, कुछ कहना है तो जल्दी कहो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, उसने फिर उसे कहने को कहा। अब आरवी ने उसकी गुस्से भरी नजरों से घबराते हुए कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात। वो इतनी घबराई हुई थी कि उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसको हकलाते देख शान ने ही उसकी बात काटते हुए कहा, कहो क्या कहना है और ये हकलाना बंद करो, जब मुझसे लड़ना होता है तब तो तुम्हें बिल्कुल घबराहट नहीं होती, फिर अब ऐसे क्यों डर रही हो जैसे मैं तुम्हें कच्चा निकल जाऊंगा? सही कहा, यही तो डर है, जैसे आप मुझे घूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनकर आप मुझे कच्चा चबा जाएं, आरवी धीरे से बड़बड़ाई, जिस वजह से शान को कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। उसने बौं हुचकाकर उसे घूरते हुए कहा, अब तुम ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ाई जा रही हो, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, वरना हटो मेरे सामने से, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा पर मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम करने हैं मुझे। आरवी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए एकदम से बोली, हाँ आप कहना क्या चाहते हैं, मैं क्या आपको फालतू लगती हूँ? आरवी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसकी बात सुनकर शान ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा, आज पहली बार तुमने कुछ सही बात कही है। सही बात माई फुट, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बहुत बिजी है ना तो मैं भी कोई फालतू नहीं हूँ, बहुत काम है मुझे भी, और आपसे तो ज्यादा ही काम करती हूँ मैं, खुद तो ऑफिस में जाकर महाराजाओं की तरह पसर जाते होंगे और बैठे बैठे हुक्म देते रहते होंगे, और उछल तो ऐसे रहे हैं जैसे कितना बड़ा काम करते हैं, लोगों को अपने इशारों पर नचाने के अलावा कोई काम आपको आता भी है जो चले हैं मुझसे कंपेयर करने? पता भी है मैं कितना काम करती हूँ, सुबह आपसे भी पहले उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, अंशु को उठाती हूँ, उसे तैयार करके ब्रेकफास्ट करवाकर स्कूल भेजती हूँ, पता भी है कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है ये? सिर्फ इतना ही नहीं, डैड का ध्यान रखती हूँ, अंशु के आने के बाद उसे लंच करवाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, दोपहर के लंच से रात का डिनर तक मैं खुद बनाती हूँ, बड़ी माँ के साथ बातें करती हूँ ताकि उनका मन लगा रहे, आपके 100 नखरे सहती हूँ, वो भी कोई कम मुश्किल काम नहीं, ऊपर से आपका गुस्सा भी झेलती हूँ, सुबह से शाम तक एक टांग पर यहाँ से वहाँ नाचती रहती हूँ, और आपको ये सब कम लगता है? आप बाहर रहते हैं तो आपको क्या पता कि एक घर को संभालना 100 ऑफिसों को संभालने से भी मुश्किल काम होता है, उसका 10-7 का टाइम तो होता है, यहाँ तो सुबह 5 बजे काम शुरू करो तो रात के 10-12 तो ऐसे बचते हैं कि पता ही नहीं चलता, ऊपर से जब आप देर रात को घर आए तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। बड़े आए मुझे फालतू कहने वाले, अगर आपने एक दिन भी मेरे जितना काम किया तो आपको आपकी नानी ना याद आती, तब कहना कि मैं कुछ नहीं करती। आरवी तो गुस्से में बोले जा रही थी और शान उसके सामने हाथ बांधे खड़ा खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। आरवी ने अब उसे देखा तो शान ने उसे घूरते हुए कहा, हो गया या और कुछ भी कहना है? हो गया, आरवी ने कहते हुए मुंह बनाया तो शान ने फिर उसे घूरते हुए पूछा, तो अब मैं जा सकता हूँ? वो क्या है ना, मुझे ऑफिस जाकर आराम से अपने कैबिन में बैठकर सबको ऑर्डर देने हैं, उसके बिना वहाँ कुछ होता जो नहीं है, शान ने तंज कसते हुए कहा और उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। आरवी ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और सर पर हाथ मारते हुए खुद से बोली, सत्यानाश हो तेरा, क्या कहने आई थी और क्या बकवास कर गई। अब वो झट से पलटी और शान को जाते देख एकदम से बोली, मिस्टर मल्होत्रा सुनिए तो सही। उसकी आवाज जैसे ही शान के कानों में पड़ी उसके कदम रुक गए, वो पीछे पलटा और बौं हुचका कर बोला, क्यों और कोई काम गिनवाना रह गया क्या? उसने आरवी को घूरा तो उसने मुंह बिचकाते हुए अपने नीचे वाले लिप्स को बाहर निकालते हुए धीरे से कहा, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? शान ने उसे घूरते हुए बौं हुचकाई, मैं तो आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई थी पर आपने ही मुझे वेल ली। वॉट? उसकी बात बीच में काटते हुए शान ने हैरानी से पूछा तो आरवी कुछ पल चुप रही, फिर सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओफो वैली मतलब नाकारा निकम्मी, जिसके पास कोई काम नहीं होता ना उसे ही वेल्ला कहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता? उसने कहते हुए मुंह बनाया तो शान ने खामोशी से उसे घूर कर देखा। आरवी ने झट से बत्ती सी चमकाते हुए कहा, सॉरी आपको कैसे पता होता, आप तो बहुत बड़े आदमी है ना, चलिए छोड़िए काम की बात पर आते हैं, आपने मुझे फांतू कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, सॉरी गुस्से में ज्यादा बोल गई, अब तो मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कहो। अब शान ने थोड़े आराम से उसे कहने को कहा तो आरवी ने अपने दुपट्टे में अपनी उंगलियों को उलझाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर घबराहट नजर आने लगी। शान उसे गहरी निगाहों से देख रहा था और पल पल उसके चेहरे के बदलते भाव को नोटिस भी कर रहा था। आरवी कुछ पल उलझी हुई सी खड़ी रही, फिर उसने अपनी नजरों को घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा, वो मुझे आपसे कहना था कि मुझे काम करना है। उसने इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगी, क्योंकि अब उसे डर था कि शान जरूर उस पर भड़केगा, पर शान तो कन्फ्यूज सा उसे देख रहा था। तो अभी तो तुमने कहा कि तुम सारा दिन एक टांग पर यहां से वहां नाचती रहती हो, अब क्या हवा में उड़ने का इरादा है?
शान ने बौं हुचकाकर उसे देखा तो उसकी बात सुनकर आरवी ने झट से आंखें खोली और हड़बड़ाहट में बोली, अरे वो तो मुहावरा था ना, मेरा मतलब ये तो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा, साफ साफ कहो। आरवी ने अब गंभीर लहजे में कहा, मुझे काम करना है। तो तुम घर में काम करती ही हो और मैंने तुम्हें इसके लिए कभी रोका भी नहीं है। बड़ी माँ के रहते तुम्हें कोई रोक ही कैसे सकता है। अगर इतने से तुम्हारा मन नहीं भरता तो कल से सब नौकरों को छुट्टी दे देता हूँ, करती रहना घर का सारा काम अकेले। शान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा तो आरवी ने मुंह फुला लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, तो आपको मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं घर के नहीं बाहर काम करने की बात कर रही थी। बाहर काम मतलब क्या, शान ने एक बार फिर बौं हुचकाकर सवाल किया। तो अब आरवी ने उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम करना है। पहले भी मैं कॉलेज से आने के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर डांस क्लास भी जाती थी। अब तो मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है, कॉलेज भी खत्म हो गया, तो मैं खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं पहले जैसे बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। और चिंता मत कीजिए, मैं बाहर किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं आपकी पत। ये कहते हुए वो चुप हो गई। शान ने गहरी नजरों से उसे देखा।
आरवी के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। उसने शान पर से नजरें हटाते हुए खुद को संभाला और आगे बोली, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मेरा आपसे कोई रिश्ता भी है। वैसे भी वो रिश्ता होकर भी नहीं है तो उसके जिक्र से क्या फायदा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपके नाम पर कोई उंगली नहीं उठेगी। मैं एक आम लड़की की तरह ही रहूंगी, बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए, क्योंकि इस घर में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर मैं तो आपकी पत्नी हूँ। खैर, मुझे आपको बताना था सो मैंने बता दिया। मैं फिर से डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं यूं घर में खाली नहीं बैठ सकती। उसके भावों को शान नोटिस कर रहा था और उसकी आंखों में आई नमी की वजह भी समझ गया था। कहीं ना कहीं आज उसकी आंखों में उतरी नमी ने शान के दिल को भी एक दर्द सा महसूस करवा दिया था, पर वो सामान्य बना रहा। उसने कहा तो था कि वो उनके रिश्ते को अनाउंस करेगा, पर अब भी दुनिया के लिए उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। और यही वजह थी आरवी के चेहरे पर छाई मायूसी और दर्द की, जिसे शान बखूबी समझ रहा था।